समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह ये सुबह भी लाई है एक नए उजाले के साथ एक नई उम्मीद की किरण, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और आज से शुरुआत हो रही है एक नए वित्तीय वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर की। हम यही उम्मीद करते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में आपने जो भी योजनाएं बनाई हों वो सफलतापूर्वक पूरी हों। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनीता आनंद। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और अनीता वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड on 100.1 megahertz and the Akashvani network. We bring you our forever exciting daily news magazine Aaj Savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 1st of April. This day is also called the April Fool's Day, Siddharth. More on this later, so let's begin with the headlines first. Siddharth.
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के मुंबई दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ और पंकज चौधरी भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
Senior BJP leader and Home Minister Amit Shah is on 2 days visit to Rajasthan. It began yesterday. He held organizational meetings in Jaipur in view of the Lok Sabha elections, which will be held in 2 phases in Rajasthan next month. In Jaipur, Mr. Shah presided over a gathering of party leaders and took an update on the election preparations for the 5 Lok Sabha seats of Dausa, Karoli, Dholpur, Nagaur, Churu and Jhunjhunu. CM Bhajan Lal Sharma, BJP State President CP Joshi, former leader of the opposition Rajendra Rathod, and other leaders were present in the meeting. Mr. Shah also had held a roadshow in Sikar last evening. The Home Minister will hold meetings of leaders from Jodhpur today.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत की अध्यक्षता में G20 आयोजन को राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन का एक उदाहरण बताया है। कल राष्ट्रीय राजधानी में सभ्यता फाउंडेशन के दिल्ली विरासत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूरे देश ने G20 की हमारी अध्यक्षता का जश्न मनाया। G20 कार्यक्रम कई मायनों में राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन का एक उदाहरण था, जहां दुनिया को चलाने वाले, दुनिया को प्रभावित करने वाले या दुनिया पर हावी होने वाले कुछ देशों की बजाय इसका दायरा व्यापक हो गया है।
दी आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम स्टेशन इज एंटरिंग इट्स 75th ईयर ऑफ फॉर्मेशन टुडे। द स्टेशन बिगैन इन 1943 एज ट्रेवनकोर रेडियो स्टेशन एंड बिकेम पार्ट ऑफ आकाशवाणी ऑन 1st of April 1950। टू मार्क द ओकेजन द तिरुवनंतपुरम स्टेशन विल बी होल्डिंग अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन दैट बिगिन टुडे। Renowned Malayalam writer George Onnakoor will inaugurate the celebrations at Akashvani Thiruvananthapuram this afternoon. As part of the year-long celebrations, various programs will be organized in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha and Kottayam. Widely appreciated programs of Akashvani such as Sahitya Ranganam, Vayulam Vidam, Kudumbarugyam and Nadakam will be presented as part of the celebrations. The Thiruvananthapuram station will rebroadcast various programs of Akashvani from the year 1950 to 2024.
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एम्फीबियस एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्फ 2024 का समापन समारोह कल विशाखापत्तनम में यूएसएस समरसेट पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है और इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय एचएडीआर संचालन शुरू करने में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं को साझा करना है।
In Kerala, swell waves inundated the coastal areas across central and southern districts last evening, prompting the district-level disaster management authorities to be in the alert mode. Swell waves flooded beaches along the coastal areas in Thiruvananthapuram, Kollam, Alappuzha and Thrissur districts. The phenomenon, referred to as Kalakkadal, locally where the sea surges into the land causing inundation. These are flash flood events that take place without any noticeable advance change in the local winds or any other apparent signature in the coastal environment. The coastal area is on high alert. The public has been advised to avoid visits to the beaches in the state.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी में आवेदन करने की तिथि को 5 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब छात्र 5 अप्रैल तक रात 9:50 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च थी।
The India Met Department, IMD, has forecast that enhanced rainfall and thunderstorm activity is likely to continue over northeast India till Thursday. Heavy rainfall and snowfall is likely to occur over Arunachal Pradesh. IMD has predicted light to moderate rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Sikkim. The weather office has also forecast light to moderate rainfall over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana and Chandigarh.
और अनीता, जैसा कि हमने बोला कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च को खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, इसके साथ ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी से आज रात प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय होगा आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण। आयकर आयुक्त धर्मवीर सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता आयकर रिटर्न भरने, नई और पुरानी कर प्रणाली और अन्य संबंधित विषयों को लेकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं वो हैं 011 यानी दिल्ली का कोड 2342-1050 और दूसरा नंबर है 2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, इसका नंबर है 9289094044। ये कार्यक्रम रात 9:30 से आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
एंड इन टेनिस, इटली यानिक सिनर वॉन द मेन्स सिंगल्स टाइटल्स ऑफ मायामी ओपन टूर्नामेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट नाइट। सेकेंड सीड सिनर डिफीटेड 11 सीड बल्गेरियन प्लेयर Grigor Dimitriev, 6-3, 6-1 in the final. Sinner's third title of the season means he will move to a career-high second in the ATP World Rankings ahead of Spain's Carlos Alcaraz. Unseeded American player Danielle Collins has won the women's singles title in a major upset. Collins defeated 4-seeded Elena Rybakina of Kazakhstan in straight sets of 7-5, 6-3 in the final.
और बात करते हैं अब क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के 13वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। तो ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइंस। मुख्य समाचारों के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय है प्रमुख महानगरों की खबरें जानने का और सबसे पहले चेन्नई की खबरें जानते हैं अनीता से।
40 years after the first flight of an Indian cosmonaut, an exhibition will be inaugurated at the Russian House in Chennai on April 3rd to 18th. The exhibition will be open from 10 in the morning. It is part of space exploration and international collaboration between the Russian House and the Russian news agency TASS. The Directorate of the Industrial Safety and Health, along with Hyundai Motor India, celebrated the 53rd National Safety Day on its factory premises in Sriperumbudur. The theme was focused on safety leadership for environmental, social and governance excellence. A handbook, Safety in Automobile Industry, was released for factory safety officers deployed in various companies across the automobile industry in Kanchipuram, Chengalpet and Tiruvallur districts. Brihad Bengaluru Mahanagar Palike had organized vintage car and bike rally in Bengaluru yesterday to educate voters on their right to vote and thereby improve voters' turnout during the Lok Sabha election in the city. The rally was flagged out by the City Municipal Corporation Chief Commissioner and District Election Officer Tushar Girinath. Speaking on this occasion, Girinath said that various innovative ideas are being planned to create awareness among the voters. He added that vintage cars and bikes always draw attention of people, and hence the rally was successful in catching the attention of people towards the forthcoming Lok Sabha elections. He called on voters to be part of the electoral process and come to vote on April 26 without fail.
और अनिता चेन्नई और बेंगलुरु की खबरों के बाद अब नजर डालते हैं दिल्ली की खबरों पर. दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक पोर्टल उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्था के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया है. आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन के पक्ष में प्रचार के लिए धनराशि मिली. लगभग 9000 पृष्ठ के आरोप पत्र में जांच के दौरान विभिन्न छापों में जब्त 480 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित जानकारी है. पुरकायस्था के खिलाफ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं बताने से संबंधित आरोप भी हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 16 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है. बढ़ते अगली खबर की ओर. दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल में कल 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया. इस परीक्षा में कुल 13,705 अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय परिसर और अन्य स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. पारदर्शी परीक्षा के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर इकबाल हुसैन और विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव मोहम्मद हदीस लारी ने अन्य अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा किया. और अनिता, अब हैदराबाद से आपके पास क्या समाचार हैं?
द सेकेंड एडिशन ऑफ द IIFL JITO Ahimsa Run for Peace and Non-Violence took place on Sunday morning at PV Narasimha Rao Marg in Hyderabad. Telangana Chief Election Officer Vikas Raj flagged off the run, which saw the participation of 2,000 runners. In the run, cash prizes were awarded to all the winners, including those in the male and female categories, aged 36 to 56 years and 56 and above. The Election Commission utilized the occasion to raise voter awareness for the forthcoming parliament elections, displaying standees and posters urging people to vote. Vikas Raj urged all citizens to exercise their vote, right to vote, emphasizing the significance of participating in the Indian Festival of Democracy.
और हैदराबाद के समाचारों के बाद अब नजर डालते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों पर. 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे. केआरसीएल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्री झा रेल मंत्रालय के अंतर्गत केआरसीएल में निदेशक संचालन और वाणिज्यिक थे. मॉनसून से पहले बृहन मुंबई नगर निगम अवरूद्ध नालों से गाद निकालने की तैयारी कर रहा है ताकि अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी बिना किसी बाधा के समुद्र में हो सके. इन नालों से गाद निकालने की लागत लगभग 2 रूपये प्रति किलोग्राम या 2,000 रूपये प्रति मीट्रिक टन है. 2024 में निगम का लक्ष्य 249 करोड़ रूपये की लागत से प्रमुख और छोटे नालों के साथ साथ मीठी नदी से अधिक गाद निकालना है. और अब रुख करते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का. जाने माने बांग्ला फिल्म निर्देशक गौतम घोष को कल गोल्डन डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया. उन्हें 2 दिवसीय एनईजेड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन दिवस पर कोलकाता में आईसीसीआर के 47वें सभागार में पुरस्कार दिया गया. इसके अलावा निर्माता अंजन बसु और बांग्ला फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को भी सम्मानित किया गया. इस फिल्म महोत्सव का आयोजन फोरम फॉर फिल्म स्टडीज एनालाइट आर्ट्स और एनईजेड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. इस फिल्म फेस्टिवल में भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली समेत 14 देशों की फिल्में दिखाई गई थीं. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. और श्रोताओं, मेट्रो की खबरों के बाद अब हम लेते हैं मौसम का हाल और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। और दिल्ली में भी मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और अब हम धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और तेज हवा चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और मुंबई की बात करें तो यहां मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। तो यानी दिल्ली और मुंबई में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक ही रहने वाला है। बात करें कोलकाता की तो वहां भी मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और अनिता, देश के महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है इसके अलावा?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्रीज एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 25 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस।
और मौसम के हाल के बाद अब वक्त हो चला है आज के दिन के इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को जानने का। और अनिता, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि 1 अप्रैल को भले ही दुनिया में लोग एक दूसरे को एप्पल फूल बनाते हो, लेकिन इतिहास की तारीख में आज के दिन की कई बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना इस दिन की बड़ी घटनाओं में शामिल है, जिसका साक्षी 1 अप्रैल का दिन रहा। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
And going back a little, in 1839, Medical College Hospital in Calcutta, having only 20 beds, was opened for male patients. In 1869, income tax was imposed. On the same day, New Indian Divorce Act came into operation. In the year 1878, Calcutta Museum was opened for the general public. And a little later, that is in 1882, Savings Bank Postal System was introduced. In the year 1889, Hindu English language paper changed its periodicity from weekly to daily. And in the year 1912, the imperial capital of India was moved from Calcutta to Old Delhi, and the province of Delhi was declared by a proclamation.
1973 में आज ही के दिन भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया। भारत, अगर हम देखें तो दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी का घर है। देश में बाघों की आबादी 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3167 हो गई थी।
In the year 1933, Indian Air Force was established at Drigh Road in Karachi, now in Pakistan. Subroto Mukherjee and 4 other officers were inducted as pilots when the first Indian Air Force squadron was formed. And in the year 1936, Orissa State was formed as province of British India, separating from Bihar. In the year 1954, Air Marshal Subroto Mukherjee became the first Indian to become the Air Officer Commanding Indian Command. And in 1957, postage stamps and sale of postal stationery was introduced as per decimal coinage system and rupee was established to 100 naya paisa.
1997 में आज के दिन मार्टिना हिंगिस टेनिस के इतिहास में सबसे कम उम्र की नंबर वन महिला खिलाड़ी बनी थी। 1847 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 20 बिस्तरों के साथ शुरू हुआ था और 1930 में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
इन द ईयर 1963 फाउंडेशन डे ऑफ द सीबीआई इज ऑब्जर्व्ड एंड 1978 इंडिया 6th 5-year प्लान कमेंस्ड। इन 1976 टेलीविजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रेडियो एंड दूरदर्शन कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। एंड इन द ईयर 1969 इंडिया फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर स्टार्टेड एट तारापुर। And in the year 1987, Bureau of Indian Standards was changed to Indian Standards Institutions, that is ISI. In the year 1995, the Airports Authority of India, AAI, formed by the merger of IAAI and NAA. And in 1997, government clarifies it's illegal to carry a child on a two-wheeler in addition to a pillion rider.
और 2004 में आज ही के दिन गूगल ने जीमेल की शुरुआत करी थी. तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की. और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हो चला है उन लोगों को याद करने का जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं और जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिन है.
बट बिफोर दैट, लाइक वी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, टुडे इज द अप्रैल फूल्स डे एंड इट्स अ कस्टम ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल कंसिस्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स. तुमने किसी पे कोई प्रैक्टिकल जोक आज किया सिद्धार्थ?
जी नहीं.
बट वी हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम बचपन ना, कि एक दूसरे को थोड़ा प्रैंक किया एंड देन वी से अप्रैल फूल बनाया.
जी बिल्कुल.
सो इट हैज अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री ऑल्सो. पीपल हैव बीन ऑब्जर्विंग इन यूरोप, इन ब्रिटेन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बिकॉज एट वन टाइम फर्स्ट ऑफ जनवरी वॉज नॉट celebrated as you know, New Year Day. They, like you said, our financial year starts from 1st of April, no? So till then, it used to be seen as the April Fool's Day. And now, let's remember those people who are either born this day or who passed away today.
जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी को, जिनका नाम आधुनिक गुजराती साहित्य में कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक और इतिहासकार के रूप में माने हैं. सरस्वती चंद उनकी सर्व प्रमुख साहित्यिक कृति है. कथा के क्षेत्र में इसे गुजराती साहित्य का सर्वोच्च कीर्ति शिखर कहा गया है. और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी की. उन्हें साहित्य अकादमी सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है. कैलाश वाजपेयी की कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कविताएं प्रस्तुत की थीं. काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर पर उन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था. 2002 में उन्हें व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था. और अगर प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो संक्रांत, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का समंदर, सूफी नामा, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष उनकी प्रमुख कृतियां हैं.
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अजीत लक्ष्मण वाडेकर, द इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर हु प्लेड फॉर द इंडियन नेशनल टीम बिटवीन द ईयर 1966 एंड 74. डिस्क्राइब्ड एज एन अग्रेसिव बैट्समैन, वाडेकर मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू इन 1958 बिफोर मेकिंग हिज फोरे इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट इन द ईयर 1966. ही बैटेड एट नंबर 3 एंड वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्लिप फील्डर्स. Wadekar also captained the Indian cricket team which won series in the West Indies and England in 1971. The first victory of Indian team in Test cricket outside of India was recorded in 1968 under the captaincy of Mansoor Ali Khan Pataudi. Captaincy and overseas wins saw Wadekar was appointed as the captain of the Bombay and soon was made the captain of the Indian cricket team in 1971, leading a side that included players like Sunil Gavaskar, G. Vishwanath, Farooq Engineer, Dilip Sardesai, and the Indian spinner quartet that included Bishan Singh Bedi, E.S. Prasanna, Bhagwat Chandrasekhar, and Venkat Raghavan. India won over 5 matches in the West Indies in the early 70s and then defeated England over 3. He led India to a third successive series victory, beating England cricket team again 2-1 in a 5-match series from 1972-73. Wadekar continued to be the captain of the Indian team that toured England in 1974.
और आपने बात करी स्पोर्ट्स की, तो कभी कभी आप जिस काम से प्यार करते हैं उसे आप कभी भी और अनिता किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं. बस दिल में कुछ कार गुजरने की तमन्ना और उसे हासिल करने की ललक होनी चाहिए. हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के ब्रिटिश मैराथन धावक फौजा सिंह की. 89 साल की उम्र में कठिनाइयों को दूर करने के लिए फौजा सिंह ने धावक बनने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग आयु वर्ग में कई रिकॉर्ड भी स्थापित किए. मूल रूप से पंजाब के किसान और लंबी दूरी के धावक को 100 साल की उम्र में फुल मैराथन पूरी करने वाले सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति माना जाता है. हालांकि उन्होंने रिटायर होने का फैसला कर लिया है, लेकिन 112 साल के फौजा सिंह फिटनेस की बात आने पर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने बने हुए हैं। फौजा सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1911 को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत पंजाब के जालंधर में हुआ था। फौजा सिंह का बचपन आसान नहीं था। उनके परिवार ने सोचा कि वो शायद अपंग हैं, इसलिए वो पैरों के कारण लंबी दूरी तक चल नहीं पाते थे। एक युवा और के रूप में उन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए खेती शुरू की। साल 1992 में वो इंग्लैंड चले गए और जालंधर में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बेटे के साथ लंदन में बस गए। फौजा सिंह ने अगस्त 1994 में अपने पांचवें बेटे कुलदीप की मृत्यु के बाद दौड़ना शुरू किया। उन्होंने दुख को दूर करने के लिए शुरू में थोड़ा टहलना शुरू किया, लेकिन 2000 में 89 साल की उम्र तक फौजा सिंह ने दौड़ को गंभीरता से लेने का फैसला नहीं किया था। जी हां, 89 साल की उम्र तक। उन्होंने प्रसिद्धि तब हासिल की जब उन्होंने उस वर्ष लंदन मैराथन को पूरा किया। उनका पहला फुल मैराथन रन 6 घंटे 54 मिनट में पूरा हुआ और इस प्रक्रिया में वो 90 से अधिक आयु वर्ग में पिछले विश्व रिकॉर्ड से 58 मिनट पीछे रह गए। तब से फौजा सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडो ब्रिटिश एथलीट ने न्यूयॉर्क टोरंटो के साथ साथ मुंबई में भी मैराथन दौड़ लगाई है। फौजा सिंह ने 2003 के टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन को 90 से अधिक श्रेणी में 5 घंटे 40 मिनट में पूरा कर एक कदम और आगे बढ़ाया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय है। साल 2011 में फौजा सिंह ने 100 वर्ष की आयु में कनाडा के टोरंटो के बिर्च माउंट स्टेडियम में विशेष ऑन्टारियो मास्टर्स एसोसिएशन आमंत्रण मीट में एक ही दिन में 8 विश्व आयु समूह रिकॉर्ड बनाए। एक दिन में अपने आयु वर्ग में उन्होंने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और आज फौजा सिंह युवाओं और बुजुर्गों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
Born on this day, 1st of April 1961, the birthday of Mark Andrew White, the English singer, songwriter, composer, musician and record producer, born in Sheffield, England. White first entered the music industry in late 1970s as the lead vocalist and keyboardist of the electronic band Vice Versa. After releasing one studio album with the band in 1980, Vice Versa member Martin Fry emerged as lead vocalist and the band opted to transform into a band called ABC. I have a snippet of a song by Andrew White. Here comes the rain.
Ruthie, go get your brother. Go and get some wood. Gotta build a fire. Get some warmth. God, if only we could find a place to settle. A place that's warm and dry. Maybe we got a chance.
And today is the birth anniversary of the drummer, songwriter and record producer from America, Jeffrey Thomas Porcaro. He's best known for being the co-founder and drummer of the rock band Toto, but is one of the most recorded session musicians in history, working on hundreds of albums and thousands of sessions. While already an established studio player in the 70s, he came to prominence in the US as a drummer on the Steely Dan album Katie Lied. All Music has characterized him as arguably the most highly regarded studio drummer in rock from the mid-70s to early 90s. A snippet from his performance.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है जोगेश दास की, जो असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। सन 1980 में जोगेश दास को उनकी लघु कथाओं के संग्रह पृथ्वी वीर ऑक्सुक के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और आज ही जयंती है ओम प्रकाश शर्मा की, जो भारत के प्रसिद्ध जादूगर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 34,000 से ज्यादा जादू के शो किए। ओपी शर्मा का रूमाल से कबूतर उड़ाना और बक्से में आदमी को गायब करने का जादू काफी चर्चित था। उन्हें और जादूगर पूरी दुनिया में ख्याति मिली।
उम्र जीना ना छीना, मुश्किल कर दे सबका जीना, नहीं तो जादूगर जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा।
और आज ही जन्मदिन है 1950 और 60 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री जबीन जलील की, जो अपने समय में दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध रहे। करीब दो दशक के अपने करियर के दौरान भले ही जबीन ने हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया, उस दौर में उन्होंने एक से बढ़कर चार मीनार, फैशन, जीवन साथी, हथकड़ी, पंचायत में काम किया। और घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही कि अपने श्रोताओं से अनुमति ली जाए। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए। सिद्धार्थ सिंह और नीता आनंद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहे आकाशवाणी कोट।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज एंड मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।